जय जय श्री धन्य जय जय चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद भक्तों का हार्दिक करें हम चर्चा कर रहे हैं चैतन्य चेता में मध्य लीला अध्याय संख्या 4 अध्याय का शीर्षक है श्री माधव ने पूरी की भक्ति भक्ति भाव और पिछले हफ्ते 121 प्यार तक संख्या चली है 134 जो है लैया सुख तुम कर बखाने भगवान नाही त्रिभुवने लैया सुख तुम कर बखाने सब भगवान नहीं देवनी लैया सुख तुम कर बखने तम सब भगवान नहीं त्रिभुवने सबका धन्यवाद हम तत्पर्य जगत गुरु श्री द्वारा श्री प्रभात जी खीर लोहिया खीर की परात को लेकर सुखे सुख सुख से तुम्हें आप करो किया मखने की क्या वो सन्यासी जिसका नाम माधवेंद्रपुरी है कृपा करके यहां पर आके ये खीर का दसवारा लेके जाएंगे और महाप्रसाद का आस्वादन करेंगे बहुत ही आनंद पूर्वक जिस वो व्यक्ति जो माधवेंद्रपुरी पा रहे हैं इस पूरे तीनों जगत में सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। तात्पर्य सुने यहां पर भगवान श्री कृष्ण के एक तथाकथित अनैतिक व्यवहार का उदाहरण है और उसका आशीर्वाद भी दिया गया है। गोपीनाथ ने इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के लिए खीर चुरा कर ये दिखाया कि ऐसा भक्त जिसके लिए गोपीनाथ ने खीर चुराया है वो तीनों लोगों में सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। इसीलिए भगवान के तथाकथित अनैतिक या ऐसा समझ लीजिए कि न्यायपूर्ण कार्य ना करने वाले चीजों को भी भक्त लोग उसका गुणगान करते हैं और ऐसे कार्य से उसका भक्त जो है बहुत भाग्यशाली बताया जाता है। इस तरीके से जो भौतिक में लिप्त मूड व्यक्ति है भगवान श्री कृष्ण के इन लीलाओं को समझ सकते हैं और ये निर्णय निकाल सकते हैं कि वो नैतिक हैं कि अनैतिक, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परम सत्य हैं, इसलिए उनके आध्यात्मिक कार्यकलाप और भौतिक कार्यकलापों में कोई अंतर नहीं है कि क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है। चाहे वो जो भी करें वो हमेशा सबके लिए हितकारी होता है। यही भगवान सब मामलों में अच्छे हैं इसका असली तात्पर्य है। गॉड इज गुड, वो अच्छे इसलिए हैं क्योंकि वो हर जगत में रहने वाले नीतिवादी लोगों का ये समझ से बाहर की वस्तु है। इसीलिए ये अच्छा होगा कि भगवान के इन दिव्य कार्यकलापों की चर्चा साधारण मनुष्यों के सामने न की जाए। ये ज्यादा बेहतर होगा कि उन साधारण मनुष्यों को हरे कृष्ण महामंत्र का दान दिया जाए ताकि वो धीरे धीरे शुद्ध हो सकें और इस स्तर पर आ सकें जहां पर वो आकर भगवान के इन दिव्य कार्यकलापों को समझ सके। तो जैसे माधवन चल रहा है अभी, और अभी भी तकरीबन 100 प्यार शेष है। तो जैसे हमने देखा कि माधवपुरी बात जब अपने गोपाल जी के लिए चंदन लेने जा रहे थे, उस सिलसिले में वो यमुना पहुंचे और गोपीनाथ जी के दर्शन किए। अभी गोपीनाथ जी का नाम खीर छोड़ नहीं पड़ाई भी पड़ेगा। तो वहां पर जब वो दर्शन कर रहे थे तो उन्होंने देखा उनके सामने भोग आया और भोग लगने लगा। तो उन्होंने पूछा क्या है, तो उनको बताया कि खीर है। तो आपके मन में विचार आया कि मैं खीर को चख के देखूंगा और अपने गोपाल जी के लिए बनाऊंगा। तुरंत ही उनके बाद उनके दिमाग में फिर दोबारा ये विचार भी आया कि भगवान को भोग लगने से पहले ऐसा सोचना अपराध माना जाता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, वो क्या हुआ, चले गए। नहीं, देखिए क्या किया, ध्यान से सुनिए। भगवान की कृष्ण बलराम की स्वाधाय की ना बंदेश माना ए इच्छा लज्जा भैया विष्णु स्मरण कैल हेनो काले भोग सरी आरती बाजिल आरती देखिया भोरी कहिल रो मुस्कार महिला आई लो कारे ना कारे किचु ना कहिल। और ये किया उन्होंने, माधवेंद्रपुरी बहुत ही लज्जित हुए कि उन्होंने उनके मन में विचार आया। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु का स्मरण किया, पहले ये किया, चले नहीं गए वहां से, पहला। दूसरा, उन्होंने ये सोचा, जब ये ऐसा सोच रहे थे उस वक्त आरती प्रारंभ हुई। उस वक्त जब आरती समाप्त हुई उसके बाद उन्होंने आरती का दर्शन, पहले आरती देखी, आरती के बाद विग्रह को नमस्कार किया, उसके बाद जगह। अक्सर बहुत सेंटिमेंटली ये चीज समझी जाती है, जैसे ही मन में विचार है चलेगा। जितने भी विचार है, जो भी भाव था वो भावुकता नहीं थी, उनका अपना कर्तव्य बता था। सबसे पहले क्षमा याचना की, फिर आरती देखी, जो कि आरती का नियम है, अगर आरती चल रही है तो खड़े होकर आरती देखी जाती है। आरती पूरी खत्म होती है, प्रणाम किया जाता है, उसके बाद मंदिर छोड़ के जाना। जितना मर्जी तीव्र इच्छा आई हो अंदर से, गलत कर दिया, ये कर दिया, होश नहीं खोए थे। अब ये महत्वपूर्ण डिटेल जो है कई बार इग्नोर कर दिया जाता है, फिर ऐसे क्रम बन जाते हैं, जैसे ही ऐसा है तुरंत चले, तुरंत नहीं चले। अपने कर्तव्य का पालन तब भी किया होंगे। ये एक भक्त का जो है असली स्वभाव दिखाता है, ही गोज इन टू डिटेल्स। भक्ति की गहराइयों में वो भक्त जो है वो जाता है। किसी भी सूरत में चाहे कैसा भी मनोभाव हो, भक्ति का जो नियम है उसको नहीं लागता, उसको नहीं लागता। अगर भागवत गीता में देखेंगे, भागवत गीता में प्रभुपाद ने माधवेंद्रपुरी पद के बोले गए कई श्लोक उद्धृत किए, कई श्लोक उद्धृत किए, जिसमें ऐसे श्लोक आते हैं कि हाँ, मैं अब संध्या वंदना में कई संध्या यानी कि गायत्री वंदना में जो है मेरा मन नहीं लगता, जो वैदिक जो नियम जो वैदिक भक्ति में जो नियम बताए जाते हैं वैदिक मार्ग में, उन नियमों में मेरा मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मेरा मन जो है पूर्ण रूप से आपके प्रति जो है आसक्त हो गया है। तो पद्यावली से ये श्लोक उद्धृत किए गए माधवेंद्रपुरी बाग में। तो पर ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं मिलता कि माधवेंद्रपुरी बाग जो है उन्होंने सारी वंदनाएं छोड़ दी थी, उनके सारे शिष्य थे, मठ में रहते थे, कुछ समय तक जब तक उन्होंने अपने शिष्य पाले और कहीं से आ सकते थे, गोपाल जी की सेवा के लिए निकले थे वहां से। और उसके बाद क्या हुआ, वापस वृंदावन नहीं गए, फिर पूरी में ही सेटल हो गए। तो कैरेक्टर बहुत अलग है। तो इससे हम देख सकते हैं से समथिंग लाइक दिस कि मेरा मन नहीं लगता, तो ये विल कंटिन्यू टू डू दैट, करते रहे बिल्कुल उसी तरीके से जिसके जिस तरीके से उनके शिष्य जो है वो भी ईश्वरपुरी बात वो भी करते रहे आखिरी समय तक, तब तक जब तक वो उठ के जा नहीं सकते थे, मालमूत्र बिछाने भी त्यागते थे तब भी। मैं चिकन साथ है जब हाँ माधवेंद्रपुरी बात सॉरी ईश्वरपुरी बात उनकी सेवा से करते थे तब तक किया उन्होंने। यहां पर यही प्रॉपर डॉक्टर में देख आ रहे हैं इस बात को कि देख सकते हैं भगवान का भगवान के जो तथाकथित चरित्रहीन कार्यकलाप भी है वो भक्तों के लिए आशीर्वाद के रूप में साबित होता है। चरित्रहीन व्यक्ति जो है इसका कोई किरदार नहीं है, ऐसे ही व्यक्ति जो है इसका कोई दीन ईमान नहीं है, वही चोरी चकारी करते हैं। तो पर वही चोरी उसके भक्त के लिए जो है बहुत बड़ा वरदान बन गई। यही तो इसीलिए प्रॉपर बताते हैं ये जो हरकतें हैं ये कैसे भगवान की, ये एक आम आदमी के लिए समझना बहुत मुश्किल है। वैसे तो सही रूप से भक्ति किए बिना भक्तों के लिए समझना भी मुश्किल है, क्योंकि भक्त भी गलत तरीके से ले लेते हैं। श्रील प्रभुपाद के वक्त भी हुआ ये सब चीजें। तो बाद जब अपने वृंदावन में सन 71 में भक्तों को लेके आए पहली बार, तो राधा दामोदर मंदिर में रुके जब उस वक्त मतलब ये सामने सिंधु पे क्लासेस चल रही थी, तो प्रभुपाद के पास कई कंप्लेंट्स है एक दिन दोपहर को कुछ वृंदावन के लोही बाजार के जो दुकानदार थे वो आए प्रभुपाद से मिलने के लिए। उन्होंने बोला कि कौन से लंगूर लेके आए अपने साथ, क्या हुआ? कहते रिक्शा पे जा रहे थे, रिक्शे पे जाते जाते सामान उठा के ले जाते हैं, दुकान से सामान खींच लेते हैं, फेरी वाले सामान खींच लेते हैं। कहते हम कृष्ण के भक्त, कृष्ण चोरी कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं। डांट लगाई फिर प्रभुपाद उनको, उनका मुआवजा भी दिया। इसीलिए था वैसे तो भक्तों को भी गली भी समझना मुश्किल है कार्य कला। तो इसीलिए यहां जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो व्यक्ति जो इसीलिए उनको कौन समझ सकता है भगवान को, जो कि ऑलरेडी लिविंग इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये कहने को जो आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक धरातल में पहले से विद्यमान है वो समझ सकते हैं। ब्रह्म हुआ है कल्पना दे अव्यभिचारी न भक्ति, जो अव्यभिचारी नहीं भक्ति, व्याभिचारी नहीं भक्ति नहीं है जिसमें अव्यभिचारी नहीं मतलब अविचल भाव से एक्सक्लूसिवली, यानी कि जिसके भक्ति में सतित्व है वो व्यक्ति जो उनको सही रूप से समझ सकते हैं। अब भक्ति करने का प्रैक्टिकली क्या मतलब होता है, प्रैक्टिकली भक्ति का क्या मतलब होता है, किस किस प्रकार से भक्ति कर सकते हैं? अरे मेरा गला बंद है, मुख भी बंद है क्या? ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति श्रवण कीर्तन नहीं कर पा रहा तो भक्ति करने का कोई स्कोप है उसके लिए? सेवा कर सकता है और स्मरण कर सकता है, जवाब नहीं करते तो 64 क्या है, क्या है जैसे सचिन सचिन मैम ड्राइविंग एट समथिंग, वो पीछे एक डिवोटी बैठे होते थे, अगर बाईपास वहां पर क्या करते थे वो क्या होता है, कर्मकांड होता है, चरणामृत पीना कर्मकांड होता है, ये आशीर्वाद देते हैं कर्मकांड होता है, परिक्रमा करते हैं कर्मकांड होता है, हाँ पानी डालते कर्मकांड होता है। अक्सर क्या होता है, हम इन सारी चीजों को कर्मकांड के रूप में लेते हैं। इस प्रकार से भक्ति के अंदर भेद बुद्धि से चलने वाला व्यक्ति जो है व्यभिचारिणी भक्ति करेगा, व्यभिचारिणी भक्ति कर नहीं सकता, ये डेफिनेशन होती है भक्ति व्यभिचारिणी। व्यभिचारिणी भक्ति का मतलब ये नहीं जो कर्म करता है, योग करता है, साधना करता है, कोई कर्मकांड करता है, ये भी कर्मकांडी माना जाएगा, इसको भक्ति के रूप में नहीं करता। ये क्या करता है, कर्मकांडी करते फिर क्या करते, पुरानी माने। पर बहुत ही संकीर्ण दृष्टिकोण होता है भक्ति के अंदर, खास तौर पर माला पकड़ने के बाद। माला पकड़ने से पहले जो है इन चीजों के बारे में ज्यादा उदारचित होते हैं, आज हम गए आरती देवी, आज हम गए प्रसाद बालिया, आज हम मंदिर गए थे, किसी भक्त ने जो है कुछ दिया तो हमने सर माथे पे लगाए। माला पकड़ने के बाद जो है अक्सर ये सारी चीजें नकार दी जाती है, ऐसे मानो कि कर्मकांड हो जाए, तो वो व्यभिचारिणी भक्ति बन जाती है हमारी। हमारी बुद्धि जो है संकीर्ण हो जाती है, हमने हम भक्ति को कर्मकांड बना देते तो व्यभिचारिणी बनती है। भक्त का मतलब है इन कर्मकांडी एक्टिविटीज को जो कि अगर इस साधु शास्त्र गुरु के हिसाब से ना करी जाए तो कर्मकांड माना जाता है, उसको भक्ति बनाई जाती है। और जो भक्ति सही रूप से नहीं कर, अगर हम नहीं करते हैं, जब भी नहीं करते हैं, तो भक्ति के इन क्रियाओं को हम कर्मकांड बना देते हैं तो वो व्यभिचारिणी भक्ति। क्लियर हो रहा है? जैसे जैसे अभी आप अभी कार्तिक होगा, आप गोवर्धन की परिक्रमा में चले हो तो वहां पे हजारों लोग होते हैं, सारे इस्कॉन के भक्त होते हैं। जब अभी बुधवार को अगले बुधवार को बहुलाष्टमी है, आप राधाकुंड चले जाओ और आपको 12 बजे देखो वो पूरा राधाकुंड भरा हुआ था, सारे इस्कॉन के भक्त होते हैं, मेजॉरिटी आसपास से आए हुए होते हैं। और क्या होता है, अगर आप लोगों ने रात भी बहुलाष्टमी में कभी गए हो रात को, तो वो कुंड में कुछ होते हैं, कौन कौन गए, कोई नहीं है। राधा कुंड में रात को 12 बजे जो है पूरे उसमें दिए बहरे होते, दिए ही दिए बहरे होते, वो दिया किसी चीज में बहरा होता है, मालूम है किस में बहरा होता है, कद्दू में, कद्दू काट के उसमें बहते हैं दिया, कद्दू बहते हैं, मालूम है क्यों, ताकि जो बांझ है उसका बच्चा हो जाए। रात को 12 बजे वो लक्ष्मी राधा कोर्ट के प्राकट्य में इसलिए आते, जो गोवर्धन परिक्रमा कर रहे होते मेजॉरिटी लोग, पूछिए क्या होता है, मेरा काम मेरा घर बन जाए, कह लो गोवर्धन में घर बना दे जाके, तो वहां पर घर बनाए तो अपना घर बन जाता, हो सकता है मैं हंसी आ रही हूं, तो उसी टाइप से जो दूसरे भक्त होते वो हमें देख के हंसते, जब हम भी गोवर्धन परिक्रमा में जाते हैं कुछ क्लियर नहीं होता, ये भक्ति नहीं है, परिक्रमा लगाना भक्ति नहीं हुई ना, क्या आया नहीं दिमाग बेचारे की भक्ति, भक्ति की क्रिया को भक्ति की तरह ना करना, उसको व्यभिचारिणी बना देती है, वेरी सिंपल। आगे क्या बता रहे हैं अब, इसलिए भगवान कितने वो ये तुम बातें, ऐसे व्यक्ति जिनकी व्यभिचारी भक्ति है उनके सामने ज्यादा चर्चा ना करा जाए तो उनके लिए क्या ज्यादा अच्छा है कि उनको हरे कृष्ण महामंत्र का कराया जाए, दान दिया जाए, उसको कराया जाए, उसको प्रदान किया जाए ताकि वो धीरे धीरे शुद्ध हो सके, प्यूरिफाई। जैसे कई बार दो चीजें होती हैं, प्रॉपर दो शब्द इस्तेमाल करते हैं अपने तात्पर्यों में, एक होता है प्योर और एक होता है प्यूरिफाइड, दोनों अलग अलग चीज है। एक है प्योर यानी कि जो शुद्ध है, और दूसरा है प्यूरिफाइड जिसे शुद्ध किया गया है, ठीक है ना। जैसे प्योर कॉन्शियसनेस शुद्ध चेतना, और दूसरा है प्यूरिफाइड कॉन्शियसनेस शुद्ध की गई चेतना, दो बिल्कुल अलग अलग चीजें। पढ़ते हैं जैसे हम, जैसे होता है कि भगवान बुद्धि सेवा में लगानी चाहिए, अपनी बुद्धि भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। कई लोग कई बार ऐसे रहते हैं इस चीज को लेकर, भगवान कह रहे हैं शुद्ध की गई बुद्धि को लगाना चाहिए, बुद्धि शुद्ध नहीं होती, बुद्धि को शुद्ध करना पड़ता। उसी प्रकार से सारी चीजें शुद्ध होती नहीं है, जो उसको शुद्ध करना पड़ता तब लगानी चाहिए। इसलिए हम बोले प्यूरिफाई, शुद्ध करने के बाद। शुद्ध कैसे करेंगे, इन्हीं भक्ति की क्रियाओं से। यहां दिया गया ग्रेजुअली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। जो भी चीज हमारे पास अशुद्ध है वो हरे कृष्ण महामंत्र से शुद्ध किया जाता है, और तब वो चीज भगवान की सेवा में लगती है। शुद्ध इस दुनिया में कोई भी शुद्ध वस्तु नहीं है, खासतौर पर कलयुग में उसको शुद्ध किया जाता है। तो कई बार भक्त लोग इस चीज में रहते हैं कि क्या मतलब लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसको पहले शुद्ध करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, दैट इज द फर्स्ट। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र पर जोर दिया जाता है। इसलिए ये जितने भी कार्यकलाप हैं, चाहे हम गुरु की परिक्रमा कर रहे होते हैं, चाहे स्नान कर रहे होते हैं, चाहे आरती कर रहे होते हैं, चाहे चरणामृत पा रहे होते हैं, ये सारी क्रियाएं अशुद्ध हैं अपने आप में, हरे कृष्ण महामंत्र के अभाव में। उसके बाद ये शुद्ध कहलाए जाते हैं, ये क्रियाएं भी अपनी चेतना में, बुद्धि और वस्तु में। तो ये डिफरेंस है, लाइक कई बार चीजें ऐसे प्यूरिफाइड होना ठीक है, शुद्ध होना और शुद्ध करना इसका मतलब शुद्ध होंगी नहीं, आपको करनी पड़ेगी। कई बार कहते हैं ये ऐसा कर दिया ये तो हो जाना चाहिए, नहीं हो नहीं जाएगा, यहां लिखा है ध्यान से पढ़िए, शुद्ध कीजिए, प्यूरिफाइड। तो इसके बाद देन कम टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज ऑफ कृष्ण। ये शुद्ध करने के बाद, होने के बाद नहीं, चीजें शुद्ध है नहीं, करनी करने के बाद हम इस समझ पर पहुंच सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं। है तो सुनी पूरी गोसाई पूरी छय दिलो खीर दिया पूजारी तारे दंडबद्ध होइलो। इस प्रकार से निमंत्रण को सुनने के बाद, पुजारी के निमंत्रण को सुनने के बाद माधवेंद्र पूरी बात बाहर निकल के आए और अपना परिचय दिया। पुजारी ने उसके बाद उनके हाथ में उस खीर के कसौरे को सौंपा और उनको साक्षात दंडवत प्रणाम किया। हाथ में ब्राह्मण को किसी को भी साक्षात दंडवत करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ब्राह्मण को सर्वोच्च वर्ण का समझा जाता है। परंतु अगर वो ब्राह्मण किसी भक्त से मिलता है तो वो प्रणाम अवश्य करता है। ब्राह्मण ने माधवेंद्रपुरी पास से ये नहीं पूछा कि क्या वह ब्राह्मण है कि नहीं, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि माधवेंद्रपुरी पास एक विशुद्ध भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के, तो और इस प्रकार के इस कोटि के भक्त हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उनके लिए चोरी तक कर ली, तो उन्होंने तुरंत ही उन सन्यासी का आध्यात्मिक स्तर समझा और उन्हें प्रणाम किया। जैसे कि श्री चंद्र बाबू बताते हैं कि वह विप्र की वन्यासी शुद्ध ज्ञान नाय जय कृष्ण तत्वेत श्री गुरु है। चाहे कि वो व्यक्ति ब्राह्मण हो या कोई साधारण, अगर वो ब्राह्मण कोई साधारण ब्राह्मण होते जो ब्राह्मण जिन्होंने मतलब पुजारी ब्राह्मण कोई साधारण ब्राह्मण होते तो वो गोपीनाथ जी के वगैरह जो है उनसे आगे भी बात नहीं करते। इसका मतलब क्या है, दोनों माधवेंद्रपुरी पाद और क्योंकि उन विग्रह ने माधवेंद्रपुरी पाद और ब्राह्मण पुजारी दोनों से बात की सपने में, तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वस्तुतः दोनों ही समान स्तर पर थे। फिर भी क्योंकि माधवेंद्रपुरी पाद संन्यास आश्रम में स्थित थे और वैश्य थे, इसीलिए परमहंस होने के नाते उस पुजारी ने उन्होंने तुरंत ही उनको साक्षात धनवत प्रणाम किया। तो कई बार जो है एक ये भी प्रश्न उठता है कि जो वरिष्ठ भक्त होते हैं खासतौर पर सन्यासी होते हैं तो उनको तो प्रणाम करना चाहिए, ये तो बात समझ आ रही है, क्या उन्हें भी प्रणाम करना चाहिए, सन्यासी को भी प्रणाम करना चाहिए? हाँ नहीं, सन्यासियों को प्रणाम करना चाहिए दूसरे भक्तों को? नहीं, कितने लोग कहते नहीं। अच्छा ये बता दीजिए कितनों को कहते पता नहीं। हाँ नहीं पूछूंगा, कोई जवाब तो देता नहीं है। ठीक है, आइडियली अगर सन्यासी चाहे तो प्रणाम कर सकते हैं, पर वर्ण और आश्रम के लिहाज से जरूरी नहीं, यही बताया था आपने। ऊंचे वर्ण या ऊंचे आश्रम में स्थित व्यक्ति अगर चाहे तो निचले व्यक्ति का जो है प्रणाम स्वीकार कर सकता है, परंतु जब वैष्णव होने के नाते कई बार वो ऐसा नहीं करते और प्रणाम भी करते हैं। प्रणाम करने के तरीके हो सकते हैं, कई बार सन्यासीगण जब प्रणाम करते हैं तो सामने वाला प्रणाम करते हैं तो प्रणाम स्वीकार करने के लिए रुक जाते हैं, हाथ जोड़ के रुक जाते हैं, या इंतजार करते हो खड़े हो तो उनको बदले में जो कोई संभाषण प्रीति संभाषण हरे कृष्ण कुछ भी ये देते हैं। तो सन्यासी जो प्रणाम नहीं करते तो उनके ऐसे नहीं समझते जी बड़े घमंडी आदमी है प्रणाम नहीं करते, देखो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके आश्रम के तहत जो है ये शास्त्र में ये विधान है, और चाहे तो प्रणाम ना करें और चाहे तो करें भी। ऐसे कई सन्यासी मैंने इसका अनुभव देखा है जो प्रणाम करते हैं, और ऐसे कई सन्यासी हैं जिनका जो पहले प्रणाम करते थे और उनके शरीर जो अब साथ नहीं देता, मुड़ नहीं पाते, झुक नहीं पाते, उम्र हो गई है तो नहीं करते, बट दैट इज द एटिकेट। आइडियली स्पीकिंग जो है जो हम जैसे जिस स्तर पे हैं हमें हर सूरत में जो है हर किसी को प्रणाम करना चाहिए, चाहे वो हमसे नीचा हो चाहे हमसे ऊंचे हो, खासतौर पर अगर वो प्रणाम कर रहे हैं। तो यहां पर बेसिकली शिष्टाचार की बात हो रही है, और जैसे यहां पर जो माधवेंद्रपुरी पाद को इस प्रकार से बुलाया पुजारी ने, आवाज दी, आमंत्रण दिया, माधवेंद्रपुरी पाद जो है वो निकल के आए, तो वो कोई झूठी विनम्रता नहीं थी। कई बार भक्तों में ऐसा देखा जाता है कि क्योंकि शायद इसका प्रशिक्षण का अभाव है या साथ ही साथ सामान्य ज्ञान के भी अभाव रहते हैं, प्रशिक्षण से ज्यादा मुझे लगता है सामान्य ज्ञान का भाव होता है। कई बार कई भक्त किसी भक्त की तारीफ करते हैं, खासतौर पर कई बार देखा, देखो सीनियर भक्त किसी जूनियर भक्त की तारीफ करते हैं, प्रभु जी आपने बहुत अच्छी सेवा की है। नहीं 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 प्रभु जी, नहीं नहीं प्रभु जी, नहीं 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 प्रभु जी, नहीं नहीं प्रभु जी, अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? नहीं 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 क्या होता है, कभी होता है ना, हाँ प्रभु जी आप बहुत बहुत ही विनम्र होते, नहीं प्रभु जी नहीं, नहीं प्रभु जी नहीं, अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? ये ना सामान्य ज्ञान का अभाव होना कहते हैं इसको, सामान्य ज्ञान का अभाव। अगर आप उनकी तारीफ कर रहे हैं तो बदले में आप उसकी तारीफ कीजिए। और जो शेय है फॉरन बता सकते हैं, जो भी मैंने किया, जो भी मैंने सीखा है, मैंने अपने गुरुवर्ग से सीखा है। ट्रांसफर करने का मतलब ये होता है, कई बार कहते हैं ना ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर कैसे करेंगे, बैंक ट्रांसफर करेंगे क्या? ट्रांसफर करने का मतलब अपनी जबान खर्च करते उस वक्त बोल दें कि मेरे ये मेरे जिनके मैं इनके मैं संरक्षण में हूं उनसे सीखा है, खत्म। तो प्रैक्टिकल वे टू ट्रांसफर। जो लोग ज्यादातर नहीं नहीं, नहीं 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 कर रहे होते, अंदर से हाँ हाँ चल रही होती और बहुत ही मतलब बचाना लगता है कई बार, मतलब देखा है कई बार, मैंने कई बार देखा सीनियर महाराज लोग आते हैं बोलते हैं आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं महाराज, महाराज अरे 40 साल हो गए उनके स्कोर में, मैं पैदा उसके सामने हूं, उनको नहीं पता कि कितनी सेवा कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो एक बार बोल रहे हैं मान लो उसको और उसका सही रूप से प्रतिदान दो, क्या नहीं महाराज मैं ठीक से नहीं कर पा रहा है कुछ भी, या ऐसे मुझे करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो ये तो यहाँ पे देखिए, जब वो मखदंदपुरी बात करने में बुलाया तो आए हो, ग्रहण किया, जो ये आपके लिए आया है, भगवान ने आपका नाम लिया है, बुलाया है, पुकारा है, पुकार के लिए, तब उन्हें नहीं 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 प्रभु जी, नहीं नहीं प्रभु जी, मेरे लिए नहीं आया। तो कई बार ये देखा जाता है ना, लेकिन सामान्य ज्ञान का अभाव है, ये विनम्रता नहीं है, ये अपना मजाक उड़ते हैं और साथ ही साथ उसका भी मजाक उड़ता है जिसके संरक्षण में हम होते हैं दोनों। तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, तो उनको बुलाया तो आए हो, आए और आगे आगे देखिए आगे क्या किया। क्षीरे वृत्तांतो ताहे लोकरि पुजारी शुने प्रेम अभिष्ट होइलो श्रीमाधवपुरी। जब उस खीर का वृत्तांत जो पूरा मतलब कैसे कैसे लीला हुई, पूरा वृत्तांत जो है वो माधवेंद्रपुरी बात को उन्होंने विस्तृत भाव से तहसील से सुनाया, तो फौरन जो है माधवेंद्रपुरी बात के अंदर क्या हुआ, प्रेमाभिष्ट होइलो, वो उनके अंदर भगवान का दिव्य प्रेम के भाव के लक्षण प्रकट हुए वो सुन के, क्योंकि वो उन्हीं के लिए मतलब भगवान ने इस प्रकार से चोरी की है। तो इसीलिए प्रेम देखी सेवा का है, ते प्रेम दिखो सेवा का है, हो ही लो विषित कृष्ण जय हर बासो है जथोचित। यानी कि उस प्रकार से दिव्य प्रेम उनके अंदर देखने के बाद, श्रील माधवेंद्रपुरी बात के अंदर देखने के बाद, पुजारी जो है वो क्या हुआ, आश्चर्यचकित हो गया। क्यों? क्योंकि वो समझ पाया, अब वो समझ पाया कि क्यों भगवान श्री कृष्ण ने इनके लिए खीर का कसौरा चुराया, क्यों इतना उनके प्रति जो है भगवान बहुत ज्यादा कृतज्ञ है, भगवान बहुत कृतज्ञ है, भगवान कृतज्ञ है। और अब समझ पाया कि भगवान का जो ये कार्य था ऐसे भक्त के लिए यथोचित था, ऐसे भक्त के लिए भगवान चुपड़ी कर भी सकते, बात समझ आ रही है। तात्पर्य तो पहला ही तात्पर्य में देखिए क्या बताना है भगवान, भक्त जो है भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण रूप से और यथोचित रूप से जो है अपने वश में कर सकता है। डिवोटी कैन ब्रिंग कृष्ण परफेक्टली अंडर हिज कंट्रोल। तो यही श्रीमद भागवतम के 10वें स्कंध के 14वें अध्याय के 30वें श्लोक में बताया गया है, अजीत अजितोपि आसी कई त्रैलोक्यम। भगवान श्री कृष्ण किसी के द्वारा जो है कभी भी जीते नहीं जाते, परंतु उनके भक्त जो है उनको भक्ति से जीत सकते हैं। जैसे कि ब्रह्म संहिता में भी बताया गया वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, कि कोई भी भगवान श्री कृष्ण को केवल वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करने से नहीं समझ सकता। केवल कहने का मतलब यहां पर यह बताया जा रहा है कि केवल वैदिक शास्त्र, जिसके पीछे जो है उसका लक्ष्य जो है वो केवल वैदिक शास्त्रों का अध्ययन है, भगवान को जानना नहीं। नहीं तो कई बार इसको भी जो है गलत तरीके से समझाया जाता है अक्सर, ये शास्त्र पढ़ के क्या होगा, पढ़ने वढ़ने से कुछ नहीं, हमने कोई पंडित थोड़ी बनना है, भक्त बनना है। कई बार भक्त लोगों को, भक्तों का ये भी एक विचार होता है, हमने कोई पंडित थोड़ी बनना है, हमने भक्त बनना है। और भगवान बता रहे हैं मूर्ख व्यक्ति की कहीं गति नहीं। सबसे ज्यादा जो है मतलब अगर भत्सना की गई है शास्त्र में, तो मूर्ख व्यक्ति की भत्सना की गई। चाणक्य पंडित कहते हैं नीति शास्त्र, ये तो शास्त्र, ये तो मतलब वैदिक शास्त्र तो दूर की बात है, नीति शास्त्र जो कि उसका कॉरलरी है उसमें बताया जा रहा है, एक समझदार दुश्मन हो और बेवकूफ दोस्त हो तो समझदार दुश्मन के साथ रहो, ज्यादा फायदे में रहोगे। तो कभी ये नहीं समझना कि पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं है। भक्तों के अंदर भी आया था, बाहर के लोग तो बोलते ही हैं, बाहर के लोग तो बोलते ही। एक बार एक इंसिडेंट हुआ था ना, हमारे मधुसूदन को वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो उन्होंने वो गीता दे रहे थे मैराथन में, तो गीता दी किसी गाड़ी में अंदर, कहते ये गीता है ना वो पता है आपको, बहुत ऊपर उठ चुके हैं इससे। उन्होंने कहा इतने ऊपर मत उठो, नीचे आ जाओ, ये कमिंग बैक पढ़ो। बहुत ऊपर उठ चुके हो, इतने ऊपर मत उठो, नीचे आ जाओ। तो पर ये भक्ति में आने के बाद भी ऐसा हो जाता है, अपने आलस को जो भक्ति का नाम देते, पढ़ना वढ़ना चाहते नहीं है, बस की होती नहीं है। अगर उधर ये देखो ना, ये स्टेटमेंट पकड़ लेंगे। ये स्टेटमेंट कहां लिखी है? इसी किताब के अंदर लिखी है ना। भगवान वेदों के अध्ययन से जो है नहीं मिलते हैं, वो वेद के अंदर ही लिखा, वेद के बाहर नहीं लिखा। तो ये चीज समझे, तो कई बार गलत तरीके से एक चीज पकड़ लेते हैं। तो भक्ति का मतलब है परफेक्ट बैलेंस। ऑल्दो ऑल वैदिक लिटरेचर इज मेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग कृष्णा, अब बता रहे हैं यद्यपि सारे वैदिक शास्त्र जो भगवान श्री कृष्ण को ही जानने के लिए हैं, फिर भी कोई भगवान को उनका प्रेमी होए बिना नहीं जान सकता, यानी कि अपने आप में पर्याप्त नहीं है। इसीलिए वैदिक शास्त्रों के अध्ययन के साथ साथ जिसको स्वाध्याय कहते हैं, व्यक्ति को भक्ति में भी लगना चाहिए, यानी कि जिसको अर्चन विधि कहते हैं। शास्त्रों के अध्ययन के साथ साथ विग्रह की सेवा भी करनी चाहिए। टुगेदर यानी कि इन दोनों के मिलान से उस साधक के अंदर भक्ति में विकास होगा और उसकी आध्यात्मिक समझ बढ़ेगी। श्रवण आदि शुद्ध चित्त गौर हृदय, भगवान का प्रेम जो है वो हर किसी जीव के अंदर विद्यमान होता है और सुप्त अवस्था में होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और कोई अगर केवल भक्ति के इन विधियों का पालन करें तो वो जगाया जा सकता है, सोए हुए चीज को जगाया जा सकता है। परंतु जो मूर्ख जो भौतिकतावादी व्यक्ति होते हैं, वो केवल भगवान के बारे में पढ़ के ये निष्कर्ष निकालते हैं उनके कार्यकलाप जो हैं वो अनैतिक हैं और वो जो है वो मतलब शास्त्रीय दृष्टि से जो है वो सही नहीं है। तो ये समझते हैं। तो कई बार यहां पर इसलिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। श्रवण आदि शुद्ध चित्त करें उदय, उदय का मतलब होता है जैसे सूर्य उगता है, सूर्य बनता नहीं है। कई बार यही जो है विचारधारा गलत समझी जाती है कि भक्ति करेंगे, भक्ति करके जैसा सोचेंगे, जैसा जैसा मांगेंगे उसी प्रकार से मिलेगा। पर एक भाव जो है आपके अंदर सुप्त होता है। ये श्रवण आदि जिते जिते करे होते, यानी कि भगवत प्रेम जो है वो अंदर होता है, बाहर से आता नहीं। कोई आदमी किसी को बाहर से भगवत प्रेम दे नहीं सकता, उसी प्रकार तो भगवत प्रेम नहीं दे सकता। इसका मतलब, इसके कई सारे मतलब होते हैं। इसका मतलब है कि भगवत प्रेम का मतलब है आपको नित्य सेवा दे नहीं सकता बाहर से, आपकी होती है चीज, ब्लैंक नहीं होती। हाँ, आप मांग के कुछ ऐड जरूर कर सकते हैं, नॉन एग्जिस्टेंट नहीं होता, कोरा कागज बिल्कुल कुछ नहीं है। इसी श्लोक के गलत समझ से जो है लोग ये समझते हैं, तो बाहर के लोग नहीं, बाहर के लोग तो कुछ नहीं समझते। ये समस्या भक्तों के अंदर आती है। कुछ थोड़ा सा भक्ति जब करते हैं सही रूप से वो भी नहीं होती, फिर कुछ साल जब करते हैं तो समझ नहीं आती क्या हो रहा है, भक्ति कुछ लग रही है नहीं लग रही, पक रही नहीं पक रही, फल रही नहीं फल रही, कब ये सब बीमारियां शुरू होती हैं। बाहर से मिलेगा स्वरूप, बाहर से आएगा भाव, बाहर से बताएंगे। यहां चैतन्य चैतन्य में कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, जितने भी स्वरूप के ठेकेदार हैं उनकी किताब पढ़ते हैं, गोविंद लीलामृत वो लिखने के बाद ही दूसरी किताब लिखी, वो जब जवानी में लिखी वो किताब, और पूरी मैच्योरिटी में 90 साल की मैच्योरिटी में ये किताब लिखी। यहां बता रहे हैं ये जो स्वरूप है वो इन सब विविध जीव के आत्मा के अंदर सुसुप्त अवस्था में होती है, कौरह उदय, और वो श्रवण कीर्तन से जगती है, बाहर से उड़ के नहीं आती अंदर। कोई बाबा, कोई पीर, कोई स्वामी, कोई महाराज कान में मंत्र बोल दे और आंखें बंद करके घुमा दे कोई, तो उससे नहीं आता। 1, 2, 3, 4, 10 दीक्षाएं भी दे दे तभी भी बाहर से नहीं आता। कौरह उदय वो अंदर होता है, वो श्रवण कीर्तन से जगाया जाता है। कॉमन सेंस है, अगर स्वरूप आपके अंदर नहीं है, अगर प्रेम आपके अंदर है नहीं और बाहर से आया है तो जा भी सकता है, जो आया है वो जा भी सकता है। कहते हैं ना, ये तो रोड पे बोलते हैं, जो आया है वो जाएगा, तो अगर बाहर से प्रेम आया है तो बाहर प्रेम जा भी सकता है, बाहर से स्वरूप अंदर आया है तो स्वरूप निकल के बाहर जा भी सकता है, बाहर से भक्ति अंदर आई है तो अंदर से भक्ति बाहर जा भी सकती है, सीधी बात। जो बाहर से नहीं आई है वो बाहर जा नहीं सकती, ये अंडरस्टैंडिंग है इसका। इसका विकास करने के लिए साधना भक्ति होती है। कई बार गलत समझ आते फिर, और तब ज्यादा समझ में आती है बातें मतलब जब अपनी भक्ति ठीक ही चल रही होती है। इसलिए इन सब चीजों से बचें। प्रभुपाद ने हर जगह पे जो है इन चीजों को जो है डाल के रखा होगा, समझो इसको छोटी सी बात थी, भगवत प्रेम की जो ये बात हुई तो ये इमीजिएटली था अपने में डाल दी कि माधवेंद्रपुरी बात का जो प्रेम है वो अंदर था, बाहर से नहीं आया। जब उन्होंने वो देखा खीर का गोसर और सुना तो उससे क्या होता है, टेक्निकली क्या होता है, अगर भक्ति रसामृत सिंधु के लैंग्वेज में चलेंगे इसका मतलब क्या होगा। खीर को और उस कथा को आलंबन मान सकते हैं, आलंबन का मतलब है वो सब्जेक्ट जिससे जो है कोई इंसिडेंस ट्रिगर होता है, और जब आपने वो उसको सुना तो सुनते ही जो है आपके अंदर क्या हुआ, राग की उत्पत्ति हुई। राग की उत्पत्ति होने के साथ साथ जो है जब राग की उत्पत्ति होती है तो उसका मतलब उस राग को प्रकट करने का एक भाव होता है, तो भाव क्या थे इसके अंदर इमीडिएटली यहां पर क्या बताया, प्रेम देखिए, प्रेम से पहले पिछले प्रयाण में बताए प्रेमाविष्ट, तो प्रेम से वो ओतप्रोत हुए, तो इसका मतलब क्या है ये समझ सकते हैं, प्रेम के जो भाव के अष्ट सात्विक लक्षण होते हैं ये चीजों का उनके अंदर प्राकट्य हुआ होगा जिसको उन्होंने देखा। बाहर से कोई इंसिडेंस जो है वो अंदर के प्रेम को ट्रिगर करता है, बाहर से प्रेम घुस नहीं आता, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि खीर खाया फिर प्रेम दिखाया, प्रेम था खीर देख के ही आ गया, सनातन गोस्वामी ने खीर चखा इमीडिएटली प्रेम आ गया, उनको नहीं पता था कि कहां से आया है सामान, कैसे क्या हुआ है। खीर के तो बहुत सारे इंसिडेंसेस होते हैं ना ऐसे, तो बट लाइक तो अंदर का प्रेम बाहर प्रकट होता है, ऐसे चीजें देख सकते हैं। समय काफी हो चुका है, हम विराम देंगे, तो एक प्रश्न पूछ सकते हैं। 138 तो अलग, भक्ति अंदर तो पहले भी था बहुत दिनों से, कुछ दिन करने के बाद चला गया तो उसकी गलती है, भक्ति की गलती थोड़ी है, भक्ति थोड़ी आके दौड़ के हाथ पकड़ेगी आपको, रुक जाओ बच जाओ, ऐसा थोड़ी है। हाँ آپ وکیل پراپت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پورا پروسیس ایگزیکیوٹ کرنا پڑے گا. جتنا کرو اتنا لابھ ملے گا. بس چھوڑ کے چلو. چھوڑ کے کہاں جائے گا؟ چھوڑ کے بھی کہاں چلا جائے گا؟ یہیں اس دنیا میں ہی رہے گا نا. دوبارہ چانس ملے گا اس کو اور کتنا چھوڑ کے چلے گا؟ ٹھیک ہے. نام دیں اس کا بہت بہت دھنیہ واد. شریمد بھاگوت شری چیتن چیتامرت کی جگت گرو شیل بھاگوت کی بھاگ وند کی تھائی گوشت ناتھ نندے ہر گرو.